بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحضرات. لاسٹ سنڈے ہم نے رب تعالیٰ کے اسم ذات سے کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. پہلا صفاتی نام الرحمن ہے. یہ اپنی تاثیر میں جمالی ہے. اور علماء کے کہنے کے مطابق اس کی جو عدد بنتے ہیں وہ ہیں 298. اس کی پڑھنے سے انسان کو جو فائدے ملتے ہیں, میرے نزدیک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سخت دل ہوتا ہے اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ سخت دلی بہت ہی تباہ کن قسم کی چیز ہے انسان کے لیے, کہ یہ رب کے قرب میں اور روحانیت کے حصول میں, علم کے حصول میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوتی ہے. کہ جو شخص سخت دل ہے وہ ان راہوں پر آگے نہیں بڑھ پاتا. تو اور اس کے فوائد ہیں, اس میں بیماریوں کو شفا ہو جاتی ہے. لیکن اس کو جو شخص پڑھتا ہے دل میں, جب بھی فارغ بیٹھا پڑھتا رہے تو شام سے پہلے فرسٹ ہاف آف دی ڈے میں الرحمن و الرحمن و الرحمن ہوں دل میں ورد رکھے, اور سیکنڈ ہاف آف دی ڈے میں یا رحمان ہوں, تو اس کے دل میں گداس پیدا ہو جاتا ہے, دل میں نرمی آ جاتی ہے. یہ نرمی دل کی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے. اسی سے جڑا ہوا ایک اور صفاتی نام ہے رب تعالیٰ کا اور رحیم. یہ بھی جمالی ہے. اور اس کے اعداد بنتے ہیں 258. اس کے 298 ہیں, اس کے 258 ہیں. اس کے اثرات تھوڑے سے اس سے مختلف ہو جاتے ہیں کہ جو آدمی اس کا ورد کرتا ہے مخلوق سے عزت پاتا ہے. اور اگر کہیں کوئی صاحب ان دونوں صفاتی اسماء مبارک کو ملا کے پڑھ لیں, الرحمن الرحیم یا سیکنڈ ہاف آف ڈے میں یا رحمان الرحیم, تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ خلق خدا میں بہت پاپولر ہو جائے گا. इसका दूसरा असर ये भी हो सकता है कि अगर कोई आदमी फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद अंगूठी पे अर रहमान और रहीम लिखवा ले, लिखवा के जुमे की नमाज के बाद पहन ले, तो उसको इससे एक हेल्प बड़ी जबरदस्त मिलती है कि जो मकरूहात हैं उनसे बचा रह जाता है इंसान, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो इन दोनों अस्माए हुस्ना को अगर पढ़ा जाए तो इज्जत बहुत मिलती है मखलूक में, हर आदमी मेहरबान हो जाता है, हर आदमी उस शख्स का काम बगैर कहे करना शुरू कर देता है। और अगर अंगूठी पे लिखवा के जुमे की नमाज के बाद पढ़ लिया जाए तो मकरूहात से दूर हो जाता है, फिर इसकी बरकत ऐसी है। तो इसके अगले फिर इंशाल्लाह बाद में अर्ज करता हूँ। किस सवाल पर छोड़ा था मैंने, जो कह रहा था कि इसका जवाब कंटिन्यू करेंगे। ये इनका गालिबन तीसरा सवाल था कि और हाउ और कैन वी कमिट टू अनदर विदाउट losing ourselves in trying to meet these vast expectations in relationship, how can we be in fulfilling partnership that also help us to grow as individual? इसके अंदर एक चीज याद रखिए, हम पार्टनरशिप तो बहुत बड़ी चीज है, उसके हकूक बहुत हैं, चाहे ये पार्टनर हमारा बिजनेस में हो या लाइफ पार्टनर, उसके हम पर बहुत हक हैं। जो अच्छा मुसलमान है वो तो अपने दुश्मन के लिए भी उतना ही हेल्पफुल और फोर्थ कमिंग होता है जितना वो अपने पार्टनर के लिए। दुश्मन ही उसके नजदीक इन टर्म्स में कोई मायने नहीं रखती कि अगर उसका दुश्मन मुश्किल में है तो वो खामोशी से उसकी मदद कर देगा कि उस मुश्किल से निकल जाए, बजाय इसके कि वो खुश हो कि मेरा दुश्मन मुश्किल में है। एक बात मैं ये अर्ज किया करता हूं कि इंसान को पहचानना बड़ा आसान है, वो फौरी तौर पे पहचाना जाता है, हम सिर्फ एक बात पे नजर रखें कि जब वो दुश्मन का जिक्र करता है तो उस वक्त उसका लबो लहजा और उसके अल्फाज क्या होते हैं, वो इंसान की इनर सेल्फ को जाहिर कर देगा। जब हमारी किसी से बिगड़ जाती है, उससे मुखालफत हो जाती है, तो हम किस तरह बिहेव करते हैं वो हमारा इनर सेल्फ होता है, ट्रू इनर सेल्फ। जो बाजर्फ लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अपने दुश्मन का तस्करा करते हुए बहुत इज्जत के साथ तस्करा करेंगे, उसकी खामियों का बयान करते हुए बड़े मोहतात होंगे, अलबत्ता उसकी खूबियों का जिक्र बड़ी फराख दिली से कर देंगे। बड़े लोगों का कायदा है। तो पार्टनर तो बड़ी इस मामले में बहुत ही आम चीज है कि पार्टनर के लिए इंसान इशार और कुर्बानी से काम लेता है। और रब ताला का जो एक निजाम कायम कर रहा है, काम कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता, इसकी मैं मिसाल अक्सर ये दिया करता हूं कि हम उस निजाम को एक्सप्लेन तो किया नहीं जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, प्रूव नहीं किया जा सकता किसी पर कि लॉजिकली। जैसे रब ताला का एक निजाम काम करता है कि दूसरों को देने से रिस्क बढ़ता है, अब अगर हम इसको लॉजिक पर परखना चाहें तो गलत है बिल्कुल। लॉजिक ये कहती है कि देने से कम होगा। मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, किसी एक का कोई एक फार्मूला निकाल लीजिए, ये प्रूव हो ही नहीं सकता कि देने से रिस्क बढ़ेगा। वो तो ये साबित करेंगे कि देने से कम होगा। लेकिन हम सबका तजर्बा ये है कि जब भी हमने खुश दिली के साथ और खुले हाथ से किसी को दे दिया, रब ताला ने कई गुना उसको करके वापस लौटा दिया। देने से बढ़ता है। ये वो निजाम है जो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसी निजाम में ये है कि जब हम दूसरों के लिए इशार और कुर्बानी से काम लेते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, इंसान को शोहरत मिलती है और आखिरत में तो अजर है ही है उसका। मैं इसीलिए एक अर्ज किया करता हूं कि जो कुछ हम ये चाहते हैं कि हमें मिल जाए रब ताला से, हम अपने दुश्मन के लिए उसकी दुआ कर दें। तो ये तो मुझे नहीं पता कि दुश्मन को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन दुश्मन के लिए दुआ करने वाले को फौरी तौर पर अता हो जाता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये मत कीजिए कि मैं इस बहाने अल्लाह ताला से अपने लिए ले लूंगा। अखलास और खलूस के साथ दुश्मन के लिए वही कुछ मांगिए रब ताला से कि या भारी ताला, वो बंदा है, तेरा बंदा है, मुश्किल में है, तो उस पर मेहरबानी फरमा दे, उसे इस मुश्किल से निकाल दे। तो ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो दुश्मन उससे निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन मुझे इतना पता है कि खुद इंसान अगर किसी मुश्किल में है तो उससे निकल जाएगा फौरन। ये जो इंसान ने पूछा है कि अपने इंडिविजुअल्स सेल्फ को लूज किए बगैर, भाई जब हम दूसरों के लिए बेलॉस होके कुछ करते हैं, दूसरों के लिए हम इशार और कुर्बानी करते हैं, रब ताला हमें बड़ाई अता फरमा देता है। ऐसे लोगों को अपनी मखलूक की नजरों में बड़ा बना देता है। और ये वो सिफात हैं इसार और कुर्बानी की जो सिर्फ बड़े लोगों में होती है, अजीम लोगों में। वो दूसरों के लिए अपने आप को मिटाते हैं, नतीजा ये होता है कि रब ताला अजर के तौर पे उनको बहुत बुलंदी अता फरमा देता है। तो ये घाटे का सौदा नहीं है, बहुत फायदे का सौदा है कि हम अपने दुश्मनों के लिए भी इसार और कुर्बानी से काम ले लें, माफ कर दें। और इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत आसान काम है कि हमारा दुश्मन भी जब हमारे साथ दुश्मनी करता है और हमारे इल्म में आता है कि उसने ये दुश्मनी की, सिंपल एक कहका लगाया, भूल गए इसको, रब ताला उसकी उसी के सदके इंसान को दुश्मन के शर से बचाए रखता है। तो सारी साजिशें और जाल जो दुश्मन फेंक रहा होता है वो पलटकर उसके ऊपर जा गिरते हैं। लेकिन शर्त यही है कि बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ कहकर लगा के बात को उड़ा दिया जाए। तो देखिए अल्लाह ताला किस कदर फिर इनायत करता। अब ये इस सवाल का जवाब मैं दे चुका, लेकिन फिर भी इसको स्पेसिफिक जवाब देने की कोशिश करता हूँ। Why people often treat their partners worse than everybody else? इसके पीछे दो वजूहात होती हैं इंसान के। एक फीलिंग तो ये होती है कि ये मेरा अपना है, मैं इसे समझा लूंगा। दूसरा ये है कि ये मेरा अपना है, ये जानता है कि मैं इसके साथ मुखलिस हूं। लेकिन ये जो दूसरा आदमी है उसको मैं अगर इस वक्त तरजीह दे दूं और उसके लिए कोई बेहतरी का सलूक कर दूं तो इसे मैं बाद में समझा लूंगा, या हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है कि वो एट हिज ओन समझ जाएगा कि चूंकि मैं इसका अपना हूं इसलिए इसने दूसरे को के साथ बेहतर सलूक कर दिया है। एक तो ये इंसान के कहीं Somewhere at the back of his mind ये चीज मौजूद होती है। दूसरी पार्टनर के अपने दिल के अंदर की फीलिंग होती है और एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पार्टनर ये सोचता है कि सबसे ज्यादा मुझे वो तवज्जो दे, मुझे मेरे साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो। तो अगर किसी वक्त वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसे नहीं मिल पाता, हालांकि वो नाइंसाफी नहीं कर रहा होता बंदा, तो बिला वजह में वो दिल में एक बात आ जाती है। ये मामला सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का है, वरना ऐसा होता नहीं कि बाकी सबको प्रेफरेंस आदमी दे अपने पार्टनर पर। ये दो वजूहात उसकी हो सकती हैं और दोनों ही वजूहात में पार्टनर पर लाजिम हो जाता है कि वो जहन में अपने ये सोच ले कि ये अपना समझ रहा है इसलिए मेरे साथ ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि अपना समझ के पहले दूसरे को दे रहा है जो गैर है। तो उसके अंदर भी हमारे लिए एक तस्कीन मौजूद है कि ये मुझे अपना समझ रहा है, तो हम उसको उस पॉजिटिव सेंस में ले लें तो वो मसला हल हो जाएगा, पार्टनरशिप बची रहती है। इनका एक और सवाल है कि व्हाट्स अ ट्रिक टू ट्रीट हैंडल कंपैशन फटीक। अब इस सवाल को ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो अगर इसको आप कहीं एलेबोरेट कर दें थोड़ा सा कि मैं समझ जाऊं उसको। इससे नेक्स्ट इनका सवाल है कि हाउ डज ए सेंट रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग ऑफ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड एंड मिसजज्ड बाय अदर्स अराउंड हिम। ये सेंट का मामला बिल्कुल सादा, सिंपल, सीधा। वो सिर्फ एक काम देखता है, क्या जो कुछ मैं किसी के बारे में कर रहा हूं, किसी के लिए कर रहा हूं, वो सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, उसका सिर्फ एक ध्यान होता है। वो उसके मुताबिक करता है बगैर ये सोचे कि कोई आदमी उसे फॉर ग्रांटेड ले रहा है या उसके उस एक्शन को कोई गलत समझ रहा है। क्योंकि एक तो उसका मामला सिर्फ और सिर्फ रब के साथ है, तो वो मुतमईन होता है कि मेरा रब दिलों के अहवाल जानता है, मेरा रब जानता है कि मैं किस जज्बे से किसी के लिए कुछ कर रहा हूं। तो अगर कोई आदमी मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, थोड़े अरसे की बात है, कुछ अरसे में इसका माइंड क्लियर हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए वो इसकी फिक्र नहीं करता कि दूसरे क्या समझ रहे हैं उसको। और होता भी वाकई ऐसा है कि किसी फकीर के किसी रवैये को गलत समझा लोगों ने, उस पर एहतजाज किया या उस पर ग्रम्बल किया, क्रिबिंग की, कुछ अरसे के बाद वही लोग कह रहे होते हैं कि सॉरी हम आपको गलत समझे थे। ये अल्लाह का एक निज़ाम है और ये इसी तरह ही होता है वो। और जहाँ तक फॉर ग्रांटेड लेने की बात है, तो उसमें भी सेंट को कतन कोई चीज पिंच ही नहीं करती। उसकी वजह यह है कि उसकी यहां तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो दूसरों के लिए हाजिर है, कोई ले जाए आके। अगर कोई आके स्ट्रेट तरीके से उससे बात कर रहा है तो भी वो दे देगा। कोई उसे बेवकूफ बना रहा अपनी दानिश में, फकीर समझ रहा होता है कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो दे देता है कि ले जा, कोई ले जा उससे क्या। उसको कोई तारीफ किसी से नहीं चाहिए, इसलिए उसको ये फिक्र नहीं कि मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, बल्कि वो उसकी इस बात को चाहेगा कि वो पूरा कर दे। क्योंकि फकीर अगर खौफजदा होता है किसी बात से, बहुत डरता है, वो ये है कि किसी की आस न टूट जाए, आस तोड़ने से डरता है वो, उम्मीद तो टूट जाएगी। इन दोनों में थोड़ा सा एक बारीक सा फर्क है। एक आदमी मेरी हेल्प कर रहा है, मैं उससे उसके पास जाता हूँ और उससे ये कहता हूँ कि मुझे मेरी फला ज़रूरत है, उसके लिए मेरी मदद कर दें आप। ये मैं उम्मीद लेकर गया हूँ उसके पास, उसके वसाइल नहीं है और फॉर सम रीज़न वो माजरत कर लेता है, इससे सिर्फ मेरी उम्मीद खत्म हुई है उस आदमी से, या उम्मीद पूरी नहीं हुई, ये ज्यादा सही लफ्ज है। लेकिन अगर कोई आदमी मुझे हर महीने फर्स्ट पे एक मेरी मदद करता है, अब मुझे उससे आस रहती है कि ये मेरी मदद करता है और इसकी तरफ से ही मेरी मुझे मदद फर्स्ट को आ जाएगी, वो नहीं आती तो उससे मेरी आस टूट जाएगी। फकीर आस तोड़ने से बहुत डरता है, आस नहीं तोड़ता किसी की। इसलिए आपने किताबों में पढ़ा होगा कि फकीर जो काम एक बार शुरू कर दे करना, उसको जारी रखता है फिर तब वक्त के दूसरा आदमी रोक ना दे। दूसरा आदमी खुद रोकेगा तो ये हाथ रोक लेगा, वरना वो अपना अमल जारी रखेगा जब तक जिंदा है, कि वो आस नहीं तोड़ना चाहता किसी की। तो ये फॉर ग्रांटेड लेने में तो कोई बात ही नहीं है, तो अंदर की हमारी फीलिंग है कि इस आदमी ने क्या समझा है, ये फॉर ग्रांटेड लेता है कि ये तो ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा क्यों करूं। फकीर के यहां तो इस किस्म की कोई फीलिंग है नहीं, वो तो खल्के खुदा को चाहता है कि ये लोग इसी तरह मुझे फॉर ग्रांटेड लेते रहें, इसलिए कि इसका अजर उसको रब से बेपनाह मिल रहा होता है। इनका सातवां सवाल उर्दू में है कि एक फकीर के लिए दोस्ती और ताल्लुक की कितनी अहमियत होती है, या एक फकीर के नजदीक दोस्ती और ताल्लुक की क्या तारीफ है। हम लोग दोस्ती को थोड़ा सा गलत समझते हैं। एक चीज है शनासाई, कि हम एक दूसरे के चेहरे से आशना हैं, कि मैं पहचानता हूं कि ये साहब यहां रोज इस बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। इससे अगला एक स्टेप है अलेक्स लैक का, वो साहब जिनके चेहरे से मैं शनास हूं उनके पास आता हूं, सलाम करता हूं, वो मुझे देखते हैं, सलाम कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, ये अलेक्स लैक के जिम्मे में आएगी बात। इससे अगला स्टेप है जान पहचान का, या उर्दू में वाकफियत के लिए एक्वेंटेंट। वो हम जिससे अलग सिलेक हो रही है उससे एक कदम और आगे चले जाते हैं, तो गपशप मारते हैं, कहीं बैठ के चाय पी लेते हैं, ये जान पहचान के जिम्मे में आएगी। इससे अगला स्टेप है ताल्लुकात का, कि हमारे दरमियान ताल्लुकात हैं, एक दूसरे के साथ रोह रस्म है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है हमारा, वो ताल्लुकात में आ जाएंगे। दोस्ती तो आखिरी दर्जा है, तो फकीर की दोस्ती और उसका किसी के साथ ताल्लुक वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तो वो दोस्ती वहां लगाएगा जहां उसको ये पूरी तरह यकीन हो जाए कि ये बंदा अल्लाह के अहकामात पे अमल करता है, तो वो उसके करीब चला जाएगा, उससे दोस्ती कर लेगा। और फकीर अगर एक बार दोस्ती कर लेगा फिर उसे निभाता है, तोड़ता कभी नहीं, फिर आखिर तक निभा लेता है। इसलिए फकीर के यहां दोस्ती कम है, वैसे भी फकीरों की यहां दुश्मनी ज्यादा होती है, मुखालफत बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फकीर की एक पहचान ये भी है कि उसकी तारीफ करने वाले कम होते हैं, मुखालफत करने वाले ज्यादा। तो कुछ लोगों ने तो इसकी रेशो निकाली है कि 33% उसकी तारीफ करने वाले होंगे और 67% उसको बुरा भला कहने वाले होंगे फकीर को। तो कुछ तो इसको पहचान की एक कसौटी बताते हैं, यार्ड स्टिक है ये, कि फकीर को बुरा भला कहने वालों की तादाद बहुत होती। तो वो अव्वल तो ताल्लुक कायम नहीं करता किसी से, दोस्ती कायम नहीं करता, लेकिन अगर कर ले तो फिर उस पर कायम रहता सारी उम्र, वो ताल्लुकात उसके चलते रहते हैं, वो नहीं तोड़ता। अगर दूसरा आदमी उसे तोड़ना भी चाहे, खत्म भी करना चाहे, तो भी ये उसे निभाता है, टूटे हुए ताल्लुकात को जोड़ता है ये। एक साहब ने कुन फयकुन के ऊपर रोशनी डालें कि कैसे काम करता है, अगर साइंसी नुक्ता नजर से कुछ जिक्र हो जाए तो बेहतर है, इसका प्रोसेस क्या है। कुछ लोगों की आवाज का वॉल्यूम कम होता है, वो जितना भी जोर से बोले उनकी आवाज 200 गज से ज्यादा नहीं दूर जाएगी। कुछ लोगों का इससे ज्यादा होता है, कुछ लोगों से एक साहब के बारे में पता ये चला, वो अंग्रेज सार्जेंट थे, तो यहाँ काकुल में, पीएमए काकुल में वो ड्रिल कराते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसी आवाज़ दी थी कि अगर बादल हों तो जो वो कॉशन काकुल एकेडमी की परेड ग्राउंड में देते थे वो एबटाबाद में क्लियरली सुनाई देती थी। ये सब इस पे डिपेंड करता है कि इंसान की आवाज का वॉल्यूम क्या है। जब हम बोलते हैं तो हवा में लहरें पैदा होती हैं और उन लहरों की स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करती है कि हम कितने जोर से बोले हैं और हमारे कितने जोर से बोलने की स्ट्रेंथ है। इसी तरह जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि ये दुआ काम कैसे करती है। साइंस के मुताबिक जब हम एक चीज के लिए दुआ मांगते हैं हम ये कहते हैं कि या बारी ताला ये ऐसा हो जाए, ये दुआ होती है हमारी कि या बारी ताला ये ऐसा हो जाए। तो साइंस का कहना ये है कि हमारे इर्द गिर्द मादा फैला है, तो जब हम ये कहते हैं या बारी ताला ये ऐसा हो जाए तो मादा अकॉर्डिंगली वैसी ही शेप लेने लगता है और वो चीज वैसी हो जाती है जैसे हम दुआ मांग रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो गई, वो काम हो गया। ऐसे अब ये साइंस की थ्योरी बयान कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दुआ इस तरह काम करती है। हमारा बिलीफ तो कुछ और है, चूंकि इन्होंने फरमाया कि मैं साइंसी नुक्ता नजर से अर्ज कर दूं तो मैं उसी तरह ही अर्ज कर रहा हूं। अब दुआ के अंदर भी हमारे यहां एक बिलीफ है, हमारा क्या पूरी दुनिया में है कि कुछ नेक लोग होते हैं जिनको हम मुस्तजाबुद्दावात कहते हैं कि उनकी की हुई दुआ कबूल हो जाती है। तो एक गुनाहगार आदमी मेरे जैसा अगर 10 बार वो दुआ करता है और काम होता है तो जो मुस्तजाबुद्दावात हैं उनके 1 बार कहे से काम हो जाता है। तो जिनके 1 बार कहे से काम हो जाता है हम कहते हैं ये साहिब अमर है कि जो इसने कह दिया वो हो गया, दुआ भी मांगने की जरूरत नहीं। तो ये फर्क क्यों है? तो ये जो मैंने पहले आवाज की मिसाल आपको दी थी ये बिल्कुल उसके मुताबिक ही है कि एक आदमी इबादत के जरिए से जहनी तौर पर उस मकाम पर चला गया है कि वो अपने जहन को जिस नुक्ते पर चाहे उस पर उसका इर्तकाज कर दे, उस पर फोकस कर ले, कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम कहते हैं, जिसको इर्तकाज तवज्जो भी कहा जाता है। तो जब वो शख्स उस मकाम पर होगा तो जब वो जुबान से कोई बात निकालेगा तो उसकी तमाम जहनी कुवत उसके पीछे काम कर रही होती है, जो मेरे जैसे गुनाहगार आदमी की है वो कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं हो सकती। तो नतीजा क्या है कि जो हमारे इर्द गिर्द मैटर फैला हुआ है मादा, वो फौरी तौर पे उस वो शक्ल ले लेता है। तो हम ये कहते हैं कि फला आदमी साहिब अमर है, वो दुआ नहीं करनी पड़ती उसे, वो जो कहता है वो हो जाता है। मैं फिर याद दिला दूंगी मैं सिर्फ साइंस के नुक्ते नजर से बात कर रहा हूं, रूहानियत या मजहबी एंगल इसका वो नहीं है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। तो ये जो कुन फयकुन है इसका ताल्लुक रब ताला से है। तो रब के बनाए हुए इंसानों की जहनी कुवत अगर यहां तक डेवलप कर सकता है कोई कि वो एक बार कहे और उसके इर्द गिर्द फैला हुआ जो मादा है वो एकदम वही शक्ल ले ले जो वो कह रहा है जुबान से, तो वो रब ताला है जिसकी कुवतें बेहद दो हिसाब हैं, लामतना ही हैं। तो जब वो कोई लफ्ज जुबान से निकालता है कि कुन, तो मेटीरियल जो मैटर हमारे इर्द गिर्द फैला है मादा, वो फौरी तौर पर वो तमाम वो शक्ल ले लेता है एक लम्हे में, इसलिए कि वहां वो वाइब्रेशंस बड़ी स्ट्रांग है वहां। तो साइंसी नुक्ता नजर से तो कुन फयकुन का मामला ये है। लेकिन मैं फिर एक बार अर्ज कर दूं, क्योंकि इसमें रिस्क यह है कि कोई भी इसे किसी तरह मोड़ कर ले जाए, कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं साइंसी नुक्ता नजर से बात कर रहा हूं, इसका मजहब से, हमारे अकायद से, हमारे मसलक से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मजहब और मसलक और अकायद वो तो इसके बिल्कुल बरक्स कहते हैं, वहां कोई दलील, कोई जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिक उसकी जरूरत नहीं है हमें। हम रब ताला की लामत ना ही कुवतों पर ब्लाइंड फेथ रखते हैं, क्योंकि वो मालिक कुल है और मालिकुल मुल्क भी है। मालिक कुल तो है लेकिन मालिकुल मुल्क भी है, तो उसकी जुबान से उसकी उसका एक लफ्ज बाइंडिंग है पूरी कायनात पर। वो फौरी तौर पर वैसे ही चीजें वकू पजीर हो जाएंगी जैसे रब चाहता है। उसे सिर्फ चाहना है, सोचना है और काम हो जाएगा। तो हमारा अकायद तो और है, लेकिन ये मजहब इनके नजर से, चूंकि उन्होंने साइंसी नुक्ते नजर से बात की थी, कि उसको मैं साइंटिफिक तरीके पे कह दूं कि कुन फयकुन कैसे काम करता है, तो वो मैंने अर्ज कर दिया उनसे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।